بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پری شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207 سے 209 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونامے ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو، کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, मार्च की 10, शाबान की 7 और इस्वंद माह की 19 तारीख। दोस्तों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। पहले विश्व समाचार पेश किए जाएंगे, विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा आज की बात। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir, और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने कहा है कि प्रतिबंधों से बचने के लिए किसी भी शक्ति के मुकाबले में कमजोरी दिखाना गलती है। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में विदेशी लड़ाके पहुंच रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को किसी को आदेश देने का अधिकार नहीं है। भारत में विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल दिखाई दे रही है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता का चयन करने वाली समिति के सदस्यों से भेंट की। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि प्रतिबंधों से बचने के उद्देश्य से अमेरिका या किसी भी शक्ति के मुकाबले में कमजोरी दिखाना एक बहुत बड़ी गलती है, जो राजनीतिक शक्ति पर वार के समान है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने कहा कि ये प्रस्ताव बहुत ही बचकाना है कि शत्रु की संवेदनशीलता को कम करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को घटाया जाए। वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रीय शक्ति को कई चीजों का घटक बताते हुए कहा कि विज्ञान और तकनीक, चिंतन मनन, स्वतंत्र विचार आदि इस घटक के भाग हैं। आपने कहा कि अगर स्वतंत्र विचार और वैचारिक प्रगति न हो तो फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कोई फायदा नहीं होगा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने सुरक्षा और प्रतिरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा लोक कल्याण, लोगों का आजीविका की ओर से निश्चिंत रहना, राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सौदेबाजी, संस्कृति तथा जीवन शैली और दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने जैसे विषयों को भी राष्ट्रीय शक्ति का ही आधार बताया। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रत्येक देश के लिए राष्ट्रों को आकर्षित करना स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ راشٹری شکتی کے کچھ گھٹکوں کو سماپت کر دیا جائے، اگر ان لوگوں کو اس بات کی انمتی دے دی جاتی تو ورتمان سمے میں ایران کو بہت بڑے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ ایشور کی کرپا سے اس کام کے ہونے کا موقع نہیں آیا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے شترو کو کوئی بھی بہانہ نہ دینے کے لیے شیتری اپستھتی کو اندیکھا کرنے اور پرمانو معاملے میں ویگیانک پرگتی کو روکنے جیسے پرستاووں کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ شیتری اپستھتی ہمیں اسٹریٹجی میں گہرائی اور ادھک راشٹری شکتی پردان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہے تو پھر ہم اس کو اندیکھا کیوں کریں۔ ورش نیتا کے انوسار پرمانو وگیان کے شیتر میں دیش کی پرگتی نکٹ بھوشیہ میں دیش کی آوشیکتاؤں کو پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے اندیکھا کرتے ہیں تو پھر کچھ ورشوں کے بعد ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ورش نیتا نے شاسن کی مضبوطی کو راشٹری شکتی سے ہی سمبندھت بتایا۔ انہوں نے کہا کہ راشٹری شکتی ہر دیش کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دیش سوتنتر رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سشکت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یوکرین میں ودیشی لڑاکے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے ادھیکاریوں نے وشو کے وبھن کھیتروں سے 1000 ودیشی لڑاکوں کے اپنے دیش میں پہنچنے کی سوچنا دی ہے۔ یوکرین کے ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ اب تک ان کے دیش میں پورے وشو سے 2200 سے ادھک لڑاکے پہنچ چکے ہیں۔ ان کے انوسار یہ لوگ روس کے مقابلے میں یوکرین کی رکشا کرنا چاہتے ہیں۔ اس رپورٹ کے آدھار پر یوکرین یدھ سے پہلے سپتاہ جرمنی سے لگ بھگ 500 لڑاکے یوکرین پہنچے تھے۔ اس سے پہلے یوکرین کی سرکار کی اور سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ روس کے ورد لڑنے کے لیے دیش کی سینا کے ساتھ 20,000 ودیشی لڑاکے وہاں پر موجود ہیں۔ روس کی گپتچر سیوا کی اور سے شکروار کو گھوشنا کی گئی ہے کہ امریکہ اور برٹن کی گپتچر سنستھاؤں نے اویدھ ڈھنگ سے ہتھیار پہنچانے اور لڑاکوں کو پہنچانے کے لیے پولینڈ کو چنا ہے، جہاں سے آتنکی گٹ داعش سہت کئی آتنکی گٹوں کے آتنکوادی یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ الیکھنی ہے کہ یوکرینی ادھیکاریوں نے گھوشنا کی ہے کہ جو ودیشی سویچھا سے یوکرین میں روس کے خلاف لڑیں گے انہیں وہ اس دیش کی ناگرکتا بھی پردان کریں گے۔ یوکرین کے گرہ منتری کے سلاکار نے اس بارے میں بتایا ہے کہ جو ودیشی اس لکش سے یوکرین آئیں گے اور سویچھا سے اپنی سیوائیں دیں گے تو انہیں یوکرین کے سیماورتی بلوں کی اور سے سیوا کرنے کا کارڈ بھی دیا جائے گا۔ الیکھنیہ ہے کہ یوکرین میں ودیشی لڑاکوں کی اپستھتی کے بارے میں سیریا نے چیتاونی دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوکرین یورپ کے لیے ایک وسترت ادلب میں پریورتت ہو جائے۔ روس کے بارے میں یورپی سنگھ کے درشٹیکون کی پاکستان نے کڑی آلوچنا کی ہے۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے یورپی سنگھ کے اس دباؤ کی کڑی نندا کی ہے کہ ان کا دیش روس کی بھرسنا کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک سوتنتر دیش ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کا دیش یورپی سنگھ کے آدیشانوسار کام نہیں کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کے کراچی نگر میں لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے یورپی سنگھ کے اس سندیش کا الیکھ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ماسکو کے ورودھ بیان جاری کرے اور سنیکت راشٹر سنگھ میں روس کی نندا کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کے آدیش کے انوسار اپنی نیتیاں نہیں بناتے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے ورد روس کی سینک کاروائی کے بعد امریکہ اور نیٹو کی نیتیوں کا انوسرن کرتے ہوئے یورپی سنگھ نے روس کے ورد کڑے پرتبندھوں کی گھوشنا کی ہے۔ اب اس کی اچھا ہے کہ دوسرے دیش بھی ایسا ہی کرے۔ پاکستان کے پردھان منتری اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں نیٹو کا سمرتھن کرنے سے ان کے دیش کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ آتنکواد کے ورودھ سنگھرش میں پاکستان کے سہیوگ اور اس کی سہکاریتا کو نیٹو نے پوری طرح سے اندیکھا کر دیا۔ برٹن نے روس کے ایک ویمان کو اپنے قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا اثر روس یوکرین کے بیچ جاری جنگ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ایسی آشنکا ہے کہ اس سے تناؤ بڑھے گا۔ ویمان کو قبضے میں لینے کی جانکاری برٹن کے ایک منتری نے دی ہے۔ ब्रिटेन ने रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा था कि यदि रूस का कोई भी विमान उसके एयर स्पेस में घुसेगा तो इसे अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे जब्त कर लिया जाएगा। बताया गया है कि अमीर रूसी नागरिकों ने दूसरे देशों में अपने चार्टर्ड प्लेन को रजिस्टर्ड करवाया है और इसके जरिए वे ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, जबकि इस एयर स्पेस को प्रतिबंधित किया गया है। इस कारण से ब्रिटेन का विमान जब्त कर लिया गया। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों के परिणाम धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगे हैं। 10 मार्च को गुरुवार की सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8 बजे मतगणना का काम आरंभ हुआ। भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर रुझान और परिणाम पल पल अपडेट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यहाँ की 403 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के हिसाब से समाजवादी पार्टी बहुमत से दूर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। उसने पंजाब में 117 में से 91 सीट जीत ली है, जिसको ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है। मतगणना पूरी न होने के कारण चुनावी नतीजों की तस्वीर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने CAA के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने शीर्ष अदालत की फटकार के बाद कथित तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को भेजे वसूली के नोटिस वापस ले लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस बार कई लोगों को क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने के नोटिस मिले हैं। लखनऊ जोन के क्लेम ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने कथित आरोपियों को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होकर इस संबंध में अपने बयान दर्ज करवाने को कहा है। उनके खिलाफ आरोप क्यों न लगाए जाएं? ये कार्रवाई तब हुई है जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के क्लेम ट्रिब्यूनल जाने के अनुरोध को ठुकरा चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल लंबी जेल की सजा काटने और पैरोल के दौरान किसी तरह की शिकायत न मिलने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे की जमानत मंजूर कर ली। वो राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान कर दी गई थी। आत्मघाती महिला की पहचान धनु के रूप में की गई थी। धनु सहित 14 अन्य लोगों की मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या भारत में संभवतः पहली ऐसी घटना थी जिसमें किसी शीर्षस्थ नेता की हत्या के लिए आत्मघाती बम का इस्तेमाल किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका पर जैविक हथियारों के निर्माण का आरोप लगाया है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर जैविक हथियार बनाना चाहते थे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संयुक्त सीमा के निकट स्थित बायोलॉजिकल लैब में यूक्रेन जैविक हथियार बना रहा था। इससे पहले रूस की सेना ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि यूक्रेन में 30 से अधिक बायोलॉजिकल लैब में जैविक हथियारों के बनाने में पेंटागन की सुरक्षा खतरा कम करने वाली एक एजेंसी लिप्त है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सोमवार को इसी प्रकार से मिलता जुलता दावा किया था। अमेरिका ने यूक्रेन के पास कई बायोलॉजिकल हथियारों पर जांच करने वाले प्रतिष्ठान की बात स्वीकार की है और इन प्रतिष्ठानों पर रूस के नियंत्रण पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अमेरिका को डर है कि कहीं इन लैबों के छिपे रहस्यों से पर्दा न उठ जाए। रूस ने कुछ ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किए हैं जिनमें यूक्रेन को अमेरिका की ओर से ये आदेश जारी किए गए थे कि वो तुरंत उन दस्तावेजों को तबाह कर दे जो पेंटागन के वित्तीय सहायता से जारी जैविक हथियारों के कार्यक्रम के बारे में हैं। रूस की इस कार्रवाई पर अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड ने सीनेट की कार्रवाई के दौरान चिंता व्यक्त की है। नूलैंड ने कहा कि यूक्रेन के पास जैविक हथियारों पर जांच करने वाले प्रतिष्ठान हैं जिन पर रूसी सेना नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है और हमें इस बात की चिंता है, इसीलिए हम उन शोध चीजों को रूसी सेना के हाथ में पड़ने से बचाने के लिए यूक्रेन के साथ सहयोग कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो सोवियत संघ से अलग हुए देशों में पेंटागन की वित्तीय मदद से चलने वाले जैविक हथियारों के कार्यक्रम की निगरानी करता आ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में 30 से अधिक जैविक हथियारों के लैबों का नेटवर्क तैयार किया गया है। यूक्रेन जैविक शोध लैब से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनमें 25 फरवरी को एंथ्रेक्स, कॉलरा और प्लेग सहित जानलेवा पैथोजन को तुरंत तबाह करने की बात की गई है जो BTWC के उल्लंघन को छिपाने का प्रयास हो सकता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के प्रारंभिक रुझान आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई है। ब्यौरा दे रहे हैं लखनऊ से मोहसिन रिजवी।
उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 260 प्लस सीटें हासिल करती दिख रही है। हालांकि रुझान ये भी बता रहे हैं कि योगी पिछली बार वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें हासिल हुई थीं। भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों का नुकसान हो रहा है और इसका फायदा अखिलेश यादव उठा रहे हैं। सपा को 80 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और इसलिए वो भी पॉजिटिव सोच बनाए हुए हैं। सपा ने ट्वीट किया कि 100 सीटों पर वोटों का अंतर 500 वोटों का है, इसलिए कार्यकर्ता और नेता अलर्ट रहें। सबसे बुरा हाल बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का है। ये दोनों पार्टियां अभी तक उतने सीटें भी नहीं जीत पाई हैं जितने फेज में चुनाव, यानी कि 7 से भी कम। कांग्रेस तो सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में ही तीसरे नंबर पर है। यहां भारतीय जनता पार्टी की आदित्य सिंह जीत चुकी हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और करहल से अखिलेश यादव जीत चुके हैं। चुनाव से पहले अखिलेश का हाथ थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार गए। टीईटी पेपर लीक से घिरे योगी के मंत्री सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। कैराना में भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। यहां सपा के नाहिद हसन जीते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को कुशीनगर में हार मिली है। वहीं देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की सांकलम सीट से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए। इसके बाद सावंत ने कहा कि बीजेपी 20 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हम महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी को पहली बार विधानसभा में एंट्री मिली है। उसके दो उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस अमित पालेकर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, वे चुनाव हार गए। पंजाब में सियासी बदलाव के कयास तो पहले से थे, लेकिन आज आए चुनाव नतीजों ने तो बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी। यहां आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुंच पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल भी चुनाव हार गए हैं। पंजाब की 117 सीटों में से 19 कांग्रेस को, 91 आम आदमी पार्टी को, अकाली को 4 सीटें, भाजपा को 2 और अन्य को 1 सीटें मिली हैं। भाजपा का उत्तराखंड और मणिपुर में सरकार बनना तय हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी को 12 महीने के अंदर चौथा मुख्यमंत्री तलाशना होगा। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को खटीमा सीट पर 6,951 वोट से हार मिली है। मणिपुर में भाजपा को सरकार बनाने के लिए स्थानीय दलों की मदद लेनी होगी। यहां भाजपा ने पहली बार सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। मणिपुर में भाजपा को 60 में से 15 सीट मिल चुकी है और 13 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे तो यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी देश में लगातार चल रही है। मोहसिन रिजवी, रेडियो तेहरान, लखनऊ।
दिल्ली स्थित ईरानी कल्चरल हाउस में सादी पुरस्कारों के वितरण का ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
दिल्ली स्थित ईरान के सांस्कृतिक केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फारसी भाषा और साहित्य के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। सादी पुरस्कार वितरण समारोह के 8वें दौर में इन शिक्षकों को भारत में फारसी भाषा के प्रोत्साहन में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
تلاش بر این شد که علاوه بر اساتید پیشکسوت اساتید جوان فعال
پچھلے ورش کرونا کے کارن ساتواں سادی پرسکار وترن سماروہ نہیں ہو سکا تھا پرنتو شکشکوں کا اس پرسکار کے لیے چین کر دیا گیا تھا جنہیں 8वें پرسکار وترن سماروہ میں پرسکرت کیا گیا ان میں فارسی کے ورد शिक्षकों के अतिरिक्त नौजवान छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं, जो फारसी साहित्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ईरान के सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अली रब्बानी ने कहा कि इस बार युवा शिक्षाविदों और फारसी शोधकर्ताओं को भी पुरस्कृत किया गया है, ताकि उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने फारसी को ईरान और भारत की साझा विरासत बताया और इस बहुमूल्य विरासत को जीवित रखने पर बल दिया, जिसका संबंध भारत के इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति से भी है। सादी पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने 13वीं शताब्दी के ईरान के विख्यात फारसी कवि एवं साहित्यकार शेख सादी शिराजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि सादी एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जो अपने ज्ञान से ईरान की सीमाओं से निकलकर पूरे विश्व में सूरज की किरणों की तरह फैल गए और मानवता के दर्द के चिकित्सक बनकर उभरे। भाषणकर्ताओं ने कहा कि शेख सादी ने इंसानों के बीच भाईचारे का जो संदेश दिया है, वह पूरे विश्व के लिए है, जहां इस समय नफरतों और आतंक का बाजार गर्म है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यापिका प्रोफेसर आजरमी दोख्त सफवी ने कहा कि सादी का मानवता का संदेश हर दौर के लिए है। ईरान के सांस्कृतिक केंद्र में इससे पहले ईरान के विख्यात फारसी कवि हकीम निजामी को याद किया गया था और ईरान से आए फारसी शिक्षकों और बुद्धिजीवियों ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के फारसी शिक्षकों के साथ फारसी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने की रणनीति और आपसी सहयोग पर विचार किया था। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आज की बात, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम सफल महिलाएं।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की परेशानियों पर चर्चा करेंगे। प्रतिबंधों के असर और परमाणु हमले के खतरे की खबर तेजी से बदल रही है। इन खबरों से दुनिया को चौकन्ना किया जा रहा है कि ये युद्ध कभी भी विनाश से महाविनाश की ओर बढ़ सकता है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी भी 7,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हों और आसमान से बम गिर रहे हों, उनकी हालत से ध्यान हटाया नहीं जा सकता। गुरुवार की रात सुमी शहर में जब बमबारी होने लगी तो छात्रों ने संदेश देने शुरू कर दिए कि चारों ओर अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं अगली सुबह देख पाएंगे भी या नहीं। सुमी विश्वविद्यालय में जब शुक्रवार शाम तक पानी नहीं आया तो वहां मौजूद छात्रों के सब्र का बांध टूट गया और वो बाहर जमी बर्फ लाकर कढ़ाई में रख रहे हैं ताकि उसको पिघलाकर पानी बनाया जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए। भारतीय मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है और यूक्रेन में फंसे छात्रों के पास पीने को पानी नहीं है।
You can see that it's heavy snowing and the water from the roof, which is like the snow which is melting, we are taking it.
3 मार्च की रात से पानी की सप्लाई बंद है। बिजली नहीं है कि टैंक का पानी गर्म करके पी सके, वो पीने लायक पानी भी नहीं है, बोतल का पानी खत्म हो गया है।
हमें कल NGO यहाँ पे जो थे ये लोग, खाने होने का इंतजाम तो कल मुझे अच्छा से मिला था, पर सर अभी पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है। कल से ही हमें पानी नहीं मिल पाया है और हम कुकिंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बना पाए। इवन हमने कॉफी भी नहीं पी रखा है और लाइट का भी क्राइसिस है, यहाँ पे पानी का क्राइसिस है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग इस हॉस्टल में 500 बच्चे के आसपास है। इसमें 2 बोतल हमें पानी मिला था, उसके बाद सारे खत्म हो गए हैं हॉस्टल के तरफ से, और ये हमारे जो हॉस्टल के मैम लोग हैं उन्होंने दिया था।
ये हालत बता रही है कि सूमी में फंसे भारतीयों को लेकर 1 मिनट की भी देरी नहीं की जा सकती। उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, वो प्यास से तड़प रहे हैं। रूस ने 24 फरवरी को हमला करते वक्त बयान दिया था कि नागरिकों पर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन नागरिक पूरी तरह से खाने पीने को तरस जाएं, ये पूरी तरह से नागरिकों पर ही हमला समझा जाता है। 4 मार्च को जब सुमी के छात्रों ने देखा कि कहीं से कोई उम्मीद नजर आ रही है
तो हम एक होप वर्ड के जरिए अभी तक यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, वी आर स्टिल होपिंग कि हमारी कोई मदद की जाए।
वो एक हॉल में जमा होने लगे ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि उनको बचाना जरूरी है। छात्र एक जगह जमा होने लगे ताकि वो अपनी बात मीडिया, दुनिया और सुपर पावरों तक पहुंचा सकें। پچھلے کئی دنوں سے ہاسٹل سے بنکر اور بنکر سے ہاسٹل بھاگتے بھاگتے ان کا حوصلہ جواب دے گیا ہے۔ 3 مارچ کی بمباری نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، ان کا دھیرج جا رہا ہے۔ حال میں موجود چھاتر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی سنکھیا کئی سو میں ہے اور ان کو بچانے کے لیے تھوڑی بھی دیر نہیں کی جانی چاہیے۔
منسٹر وغیرہ اور ایمبیسی سے ہماری کسی سے بھی کوئی خاص کر بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔
ہم ایمبیسی سے ٹچ میں رہنا چاہتے ہیں پر ایمبیسی کال ریسیو نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اب ہمارا ہیلپ کیسے کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو ایجپٹ کے اسٹوڈینٹ ہیں ان کے کانٹریکٹر اور ان کے جو ایمبیسی ہے آج انہیں ایویکویٹ کرے گی۔
سومی اسٹیٹ یونیورسٹی کے چھاتروں کا کہنا ہے کہ نائجیریا اور مصر کے چھاتر ہاسٹل سے جا رہے ہیں۔ بھارتی چھاتروں نے نائجیریا کے چھاتروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کون لے کر جا رہا ہے اور یہ کس راستے سے جا رہے ہیں۔ کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی مہا سبھا میں نائجیریا اور مصر دونوں نے روس کے خلاف متدان کیا تھا۔
جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاسٹل میں نائجیرین لوگ بھی ابھی جانے والے ہیں، ان کا ٹائم ہے، ان کی جو مطلب گورنمنٹ ہے انہوں نے آرڈر دے دیا ہے ان کو جانے کے لیے، اور ہماری گورنمنٹ، ہم 800 لوگ ہیں اور ہم یہیں پہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور ایجپشنز بھی آج 12 بجے چلے جائیں گے یہاں سے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
بھارت سرکار کو پتہ لگانا چاہیے کہ نائجیریا اور مصر کے چھاتر کس طرح سے اور کس کی مدد سے نکل رہے ہیں، تاکہ اسی طریقے سے سومی میں پھنسے بھارتی چھاتروں کو نکالا جا سکے۔ حملے کے بعد ہی سومی شہر کی لائٹ چلی گئی اور چھاتر پریشان ہیں۔
سومی کی لائٹ چلی گئی بھائی، پورے سومی کی لائٹ چلی گئی، ابھی بلاسٹ ہوئی بہت بڑی، پورے سومی کی لائٹ چلی گئی بھائی، بہت بڑی بلاسٹ ہوئی ہے۔ ادھر لگ رہا ہے آ رہا ہے کیا؟
شہر کا آواز آ رہا ہے، نہیں 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 وہاں گرا ہے شاید،
ہاں ہاں کہیں ادھر اٹیک ہو جائے بھائی۔ لگ رہا ہے اپنی یونیورسٹی بلڈنگ پہ گئی ہے، سومی والی بلڈنگ پہ گئی ہے، لگ رہا ہے لمبی والی بڑی والی بلڈنگ پہ لگ رہا ہے گئی ہے۔
ابھی بلاسٹنگ ہوئی ہے 2 گھنٹے پہلے، اور ہم پانی کے لیے آئے ہیں، جیسے ادھر سے سیلٹر سے آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، ابھی واش روم تیز لگی ہوئی ہے، بٹ نلکے میں پانی ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں نلکے میں۔ ابھی بلاسٹ کے بعد پانی بالکل غائب ہے نلکے میں، اس نل میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے، تھوڑا نیچے کر کے دکھائیے گا، اس میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے، یہ بھی ایک دم سے یہ ہے، ادھر نل ہے اس میں بھی پانی بالکل نہیں آ رہا ہے، نیچے کر کے دکھائیے گا، اس میں بھی پانی نہیں آ رہا ہے، دیکھیں۔ اب ہم لوگ بنا پانی کا، لائٹ نہیں ہے ہاسٹلس میں، بنا لائٹ کا، پیسہ نہیں ہے پاکٹ میں، بنا پیسے کا ہم لوگ کیا کریں گے؟
اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کل رات سے پانی جو گئی ہوئی ہے، ابھی تک پانی نہیں آ رہی ہے، ابھی تک چیک کیجیے، ابھی تک دیکھ سکتے ہیں ابھی تک پانی نہیں آ رہی ہے، اور باہر بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، اور ہم لوگ واش روم کے لیے پانی یہ کر رہے ہیں، پانی نہیں آ رہی ہے، کچھ پینے کے لیے پانی گرم کرنا تھا کیونکہ بیکٹیریل واٹر ہے، ایسے ڈائریکٹلی پی نہیں سکتے، تو پانی نہیں ہے کہ ہم لوگ پیئیں، اب واش روم ٹوائلٹ جانے کے لیے پانی نہیں ہے، کسی نل میں پانی نہیں ہے۔
چھاتروں کا کہنا ہے کہ سومی میں بسیں اور ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں، انہیں پتا نہیں کہ سڑک پر نکلنا کتنا سرکشت ہے یا نہیں، کتنی دور جا سکتے ہیں، گھر میں رہنا بھی اب جان لیوا ہو گیا ہے۔
ہم یہاں پہ سومی اسٹیٹ یونیورسٹی کے چھاتر ہیں جو یہاں پہ ابھی پھنس چکے ہیں وار کے سچویشن میں، ہمیں یہاں پہ ایویکویشن نہیں کرایا جا رہا ہے، ہمارے آس پاس کے سبھی خاتون بھی اور دوسرے بھی سٹی سے یہاں پہ ایویکویشن ہو چکا ہے، بٹ ہمارا ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا ہے، ہماری پرشاسن سے بات ہو رہی ہے بٹ ہماری کوئی سنی نہیں جا رہی ہے، یہاں پہ کھانے کے اسٹاک سب ختم ہو چکے ہیں، हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे फंस चुके हैं। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वगैरह और एम्बेसी से हमारी किसी से भी कोई खासकर बातचीत नहीं हो पा रही है। आप हमारी बात को सुने और यहाँ पे हमारे सुमी शहर पे थोड़ा सा अटेंशन दे ताकि हम स्टूडेंट्स यहाँ से अपने अपने घरों के लिए निकल सके।
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शहर में कोई भी मेट्रो स्टेशन या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे हम छुप सके। यहाँ पे सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिनके नीचे हम रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस शहर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास वाले सिटीज खारकोप या कीव उन पे सब बोल रहे हैं कि उनके लिए एडवाइजरीज जारी की जा रही है, बट हमारे शहर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया है। यहाँ तकरीबन 700 के करीब बच्चे हैं जो अभी भी यहीं फंसे हुए हैं और यहाँ से एक भी बच्चा अभी भी इवैक्यूएट नहीं हुआ है। तो प्लीज मेरी, हम एम्बेसी से बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर से, या जितने भी हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं पर्सनली, हम सबसे बात कर चुके हैं। सबने यही कहा कि आप हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्लीज होप। तो हम एक होप वर्ड के जरिए ही अभी तक यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। वी आर स्टिल होपिंग कि हमारी कोई मदद की जाए।
कल यहाँ सुमी में काफी ज्यादा बम्बार्डिंग हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, बच्चे बंकर में रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था आने वाला अगले घंटा में क्या होगा, सारे बच्चे परेशान थे। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट हम 20 से 25 इयर्स ओल्ड हैं, फर्स्ट टाइम घर से निकले हैं, घर वाले भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए।
छात्रों के पास मनोबल ही बचा है और इसके बल पर वो 1400 किलोमीटर दूर रोमानिया या हंगरी नहीं जा सकते, लेकिन रोमानिया में भारत सरकार के मंत्री की बहुत ही भद हुई जब उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई और ये कोशिश की कि सारे का सारा क्रेडिट भारत सरकार को दे दें, लेकिन वहां पर मौजूद रोमानिया के अधिकारी से उनकी बहस हो गई।
Talk about this kind of guys, not dogs, not...
Let me decide what I'm going to speak on.
Please.
Let me decide what I'm going to speak on.
Please, explain to them when they leave home.
No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back.
Please.
Okay? Kindly stand back.
Hey, so that's the arrangement. I provide shelter here. I provide food for these guys, not you.
I understand.
Explain to them when they leave home.
I understand.
When they leave home.
Kindly stand back. Thank you very much.
एक छात्र फैसल ने ही बताया कि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को रोकने के लिए रास्ते के सारे पुलों को ध्वस्त कर दिया है, इसीलिए सरकार की पहल से ही इन छात्रों को यहां से निकाला जा सकता है। सुमी में होने वाली बर्फबारी और तेज हवाएं किसी बमबारी से कम नहीं। इस मौसम में भूखे प्यासे छात्र 1400 किलोमीटर की यात्रा या कई घंटे का सफर नहीं कर सकते। सुमी में मौजूद छात्रों का कहना है कि बमबारी से ज्यादा ठंड खतरनाक हो गई है। बिजली न होने की वजह से रूम हीटर काम नहीं कर रहा है। हरियाणा की छात्रा साया और अंकिता ने मीडिया के लिए अपना एक मैसेज भेजा। सुमी में फंसे छात्रों के माँ बाप के होश उड़े हुए हैं, लेकिन इनके परेशान होने से छात्रों का दुख और दर्द कम होने वाला नहीं है। भारतीय पत्रकार अभिसार शर्मा सरकार के मंत्रियों द्वारा अपनी पीठ थपथपाने की निंदा करते हुए कहते हैं,
यूक्रेन के अंदर सुमी नाम के शहर में मेरे छात्र अब भी फंसे हुए हैं, ये तस्वीरें देखिए, गुहार लगा रहे हैं लोग, और मोदी सरकार के मंत्री जो हैं छोटी छोटी बातों पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये छात्र इतने मजबूर हैं कि इन्हें बाहर जो बर्फ पड़ी हुई है उसे समेट कर, उसे सहेज कर रूम के अंदर लाना पड़ रहा है, उसे गर्म करके पीना पड़ रहा है, क्योंकि ना इनके पास पानी है और खाना नहीं है, भूखे हैं ये लोग, कई लोग दो दो दिन से भूखे हैं, और ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
सरकार की पहल के बिना यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब भारतीय छात्रों को निकालने में सरकार क्या करती है ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
سفل مہیلائیں۔ دوستو، کارکرم سفل مہیلائیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہے مریم مہر دادی، اور احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، آج کے کارکرم میں بھی ہم ایران کی ایک سفل مہیلا سے آپ کو پرچت کروائیں گے۔ آشا کرتے ہیں کہ آپ کو کارکرم پسند آئے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔
دوستو، آج کے کارکرم میں ہم آپ کا پریچے بال ایوم کشور ساہتیہ کے کھیتر میں ایک ایرانی کویتری اور لیکھیکا سے کرائیں گے۔ 9 جولائی کا دن بچوں کی کتابوں کے لیکھکوں اور چترکاروں دوارا بال ساہتیہ دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کے کارکرم میں ہم بال ایوم کشور ساہتیہ کے کھیتر میں کام کرنے والی ایک ایرانی کویتری اور لیکھیکا سے آپ کو ملوائیں گے۔ ساہتیہ کے مہتوپورن بھاگوں میں سے ایک بال ایوم کشور ساہتیہ ہے۔ کہانیاں اور کویتائیں وبھن بھاشا کوشلوں کو وکست کرتے ہوئے ان کے تتکالین انوبھو سے پرے بچوں کی دنیا کو سمردھ بنانے کے لیے ایک وشال سروت کا پرتندتو کرتے ہیں۔
بچپن میں کہانیاں اور کویتائیں سننے کا سکاراتمک انوبھو سوئم کہانیاں اور کویتائیں پڑھنے کی اچھا کو پریرت کرے گا، جو بچوں میں ساکشرتا کا وکاس کرے گا۔ یہ اکائی آپ کو سرل طریقوں سے اپنے چھاتروں کی بھاشا اور ساکشرتا کوشل کو بڑھانے کے لیے ککشا میں پارمپرک اور آدھونک کہانیوں اور کویتاؤں کے اپنے گیان کا اپیوگ کرنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے، کیونکہ ایسی کتابیں جیون میں ایسے سمے میں پڑھی جاتی ہیں جب بچے کے ویکتتو اور انوبھوتی کا نرماڑ اور وکاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت مہتوپورن ہے کہ ان کتابوں کے مادھیم سے بچے میں کس طرح کی سامگری، اودھارنائیں، مولیہ اور وشش درشٹی پیدا کی جائے۔ کئی لیکھکوں نے اس کھیتر میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور وہ وبھن آیاموں میں پربھاوشالی بھی رہی ہیں۔
ڈاکٹر افسانہ شاہوان نجاد بال ایوم کشور ساہتیہ کے کھیتر کی ایک پرسدھ لیکھیکا اور کویتری ہیں۔ وہ فارسی بھاشا اور ساہتیہ کی وشیشجیہ ہیں اور ناٹکیہ ساہتیہ میں انہوں نے ماسٹر ڈگری پراپت کی ہے۔ ڈاکٹر افسانہ نے ورش 1981 میں تہران کے شیشک معاملوں کے پرکاشنوں میں سے ایک کے ساتھ بچوں ایوم کشور ساہتیہ کے کھیتر میں اپنی گتویدھیاں شروع کی تھیں، اور کچھ سمے کے لیے انہوں نے ریڈیو پر پرسارت ہونے والے کارکرم چھوٹے بچے اور کرانتی کے بچے کے سمپادک کے روپ میں بھی کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھاتروں سے سمبندھت وبھن پتریکاؤں میں سمپادک کے طور پر کام کیا ہے۔ شابان نجاد اس سمے ایرانی بچوں ایوم کشور کے بودھک وکاس کیندر کی کویتا پریشد کی پربھاری ہیں۔ بچوں اور کشوروں کے لیے کویتا، کہانی، انواد اور پنر لیکھن کے کھیتر میں اس محنتی کویتری اور لیکھیکا کی اب تک 400 سے ادھک پستکیں پرکاشت ہو چکی ہیں، جن میں سے 40 کتابیں ایسی ہیں جنہیں وبھن کلا اور ساہتیہ اتسووں میں پرسکرت کیا گیا ہے۔
ایران کی پرسدھ لیکھیکا اور کویتری دوارا لکھی گئی کتابوں اور کہی گئی کویتاؤں کو پڑھ کر अनगिनत बच्चों ने अपना बचपन बिताया है। उन्होंने अपने जीवन के 30 से अधिक वर्षों के सबसे अच्छे पल बच्चों की दुनिया में बिताए, जिसे वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और मीठे पल बताती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वो बच्चों की तरह मीठी मीठी और खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 18 वर्ष की आयु में लिखी थी। डॉक्टर अफसाना शाबान निजात कहती हैं कि अभी भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं फिर से बचपन में लौट गई हूं और मैं अपने अंदर बचकानी भावनाएं देखती हूं। जब छात्र इस तरह की कहानियां सुनते या पढ़ते हैं तो वे अन्य पुस्तकों में उन्हीं शब्दों और वाक्यांशों को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपने स्वयं की बातचीत और लेखन में इस ज्ञान को लागू करने लगते हैं।
डॉक्टर शवन निजात कहते हैं कि बच्चों के साथ कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और उनकी उपस्थिति से कवि और लेखक की ओर से बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बाल कहानियों और कविताओं के अच्छे ज्ञान के साथ आप विद्यार्थियों को राष्ट्रीय संस्कृति की विरासत का महत्व जानने व उसका आनंद लेने के लिए तथा इतिहास और संस्कृतियों के प्रति अपनेपन का भाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शाबान निजात कहती हैं कि वैसे तो बच्चों के बीच में रहना, उनसे बातें करना स्वयं एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कहती हैं कि मैं अब अपने कामों में बच्चों की दुनिया से प्रेरित होने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कहानी के जरिए हो या फिर कविता के माध्यम से। मैं निश्चित रूप से एक शेर या कहानी इस तरह लिखने की कोशिश करती हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को उसमें देखे और महसूस करे। इसी तरह मैं अपनी कविताओं और लेखों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हूँ जो बच्चों की भाषा से नज़दीक हो और उन्हें किसी भी तरह पढ़ने में कोई कठिनाई पेश ना आए।
शाबान निजात की विशेषता यह है कि उनके लेखन में निराशा बहुत कम होती है। वह इस बात की कोशिश करती हैं कि आशा, स्नेह और आत्मीयता को बच्चों को तोहफे के तौर पर दें। परिवार पर वो विशेष तरीके से ध्यान केंद्रित करती हैं और उनके लेखन में बहन, भाई, माता पिता की भूमिका प्रमुखता से होती है। डॉक्टर निजात का मानना है कि क्योंकि बच्चों का पालन पोषण पारिवारिक वातावरण में होता है और जब ये वातावरण जोश से और आत्मीयता से भरा होता है तो जीवन आसान और अधिक सुंदर हो जाता है। कवित्री शाबान निजात कहती हैं कि मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ। मेरा सपना है कि मैं बच्चों, अपने प्रशंसकों और प्रकृति के बीच एक ऐसा संपर्क बना सकूँ और साथ ही बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से परिचित कराना भी मुझे बहुत पसंद है।
डॉक्टर अफसाना शाबान निजात कहती हैं कि मैं एक इंसान होने के नाते हर चीज़ का सम्मान करती हूँ, चाहे वो पत्थर ही क्यों न हो। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे प्रशंसकों के भीतर भी इसी तरह की भावना हो और वो प्रकृति से प्रेम करें, यहाँ तक कि एक पत्थर को भी एक जीवित प्राणी के रूप में देखें। शाबान निजात कहती हैं कि मैं जो कविताएँ कहती हूँ उनमें बचकानी भावनाएं होती हैं और ये मेरे लिए एक दिव्य उपहार है, क्योंकि बच्चों की एक स्पष्ट और साफ सुथरी दुनिया होती है और ये मुझे हमेशा एक बच्चा बनाए रखती है। मैं अपने कामों से बहुत संतुष्ट हूँ और अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो भी मैं इसी काम को ही चुनूंगी। वो कहती हैं कि संभव है कि आप अपने छात्रों के लिए साहित्य का मुख्य स्रोत हो, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आपको अपने छात्रों की उम्र और स्तर के अनुरूप ऐसी विविध कहानियों और कविताओं की जानकारी हो जिन्हें आपने किताबों में पढ़ा था या जिन्हें अपनी याददाश्त से सुना सके।
बच्चों और किशोरों की इस प्रसिद्ध ईरानी कवित्री के पास कला में डॉक्टरेट की डिग्री है और साथ ही कथा और कविता में प्रथम श्रेणी का कलात्मक बैज है। वर्ष 2008 में उन्हें उनकी पुस्तक अरंग अरंग बेगुछेरंग के लिए न्यू होराइजन्स बोलोगना इटली अवार्ड के दूसरे स्थान के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2010 में उन्हें बच्चों और किशोरों के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार एस्ट्रिड लिंडग्रेन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। शाबान निजात की किताब मास्ते शीरीन स्वीट योगर्ट को 2015 में म्यूनिख इंटरनेशनल लाइब्रेरी की वाइट क्रो की सूची में शामिल किया गया था। इसी तरह इस ईरानी कवित्री द्वारा लिखित पुस्तक एक शेर बी ताकत को जर्मनी में म्यूनिख इंटरनेशनल लाइब्रेरी द्वारा दुनिया की शीर्ष कविता पुस्तकों में से एक के रूप में पेश किया गया।
डॉक्टर शाबान निजात ने अपने ज्ञान और कार्य की स्थिति में प्रगति और उसमें सुधार के संबंध में इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की यात्रा की है और अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का अनुवाद भी किया है। उनका मानना है कि हर इंसान, पुरुष या महिला, जो कुछ भी वो चाहता है उसे अपने लगन और प्रयास से प्राप्त कर सकता है। प्रयास मनुष्य को उसकी इच्छाओं के करीब लाता है, विशेष रूप से अब साइबर स्पेस के दौर में। हम प्रशासकों और आसपास की दुनिया के साथ पहले से अधिक और बेहतर तरीके से संपर्क बना सकते हैं। वो कहती हैं कि जो लोग रुचि रखते हैं वे अपने काम मुझे टेलीग्राम, ईमेल आदि के माध्यम से भेजते हैं और मैं उन्हें जवाब देती हूँ।
डॉक्टर अफसाना शाबान निजात फज्र अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव, पोया नमाई एनिमेशन अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, रजवी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्रालय के वार्षिक पुस्तक महोत्सव, कलम किताब महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन महोत्सव, बच्चों एवं किशोरों के बौद्धिक विकास के साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, शाह चिराग साहित्यिक और कलात्मक महोत्सव, शीर्ष पुस्तक महोत्सव और बच्चों एवं किशोरों के बौद्धिक विकास के लिए केंद्रीय पटकथा लेखन महोत्सव आदि में जज के तौर पर भाग ले चुकी हैं। डॉक्टर अफसाना शाबान निजात के दो बच्चे हैं, वो भी अन्य ईरानी महिलाओं की तरह अपने पति के साथ जो साहित्य में अत्यधिक रुचि रखते हैं परिवार और समाज में प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम हैं। शाबान निजात इस संबंध में कहती हैं कि अगर मेरे पति का सहयोग न होता तो आज मेरी इतनी सारी किताबें न होती। मैं ईश्वर से दुआ करती हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर दिन गुजरे हुए कल से बेहतर काम कर सकूं।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सफल महिलाएं और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि प्रतिबंधों से बचने के लिए किसी भी शक्ति के मुकाबले में कमजोरी दिखाना बहुत बड़ी गलती है। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में विदेशी लड़ाके पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें किसी को आदेश देने का अधिकार नहीं है और भारत में विधानसभा के चुनाव में मतगणना जारी है पर स्थिति पूरी तरह भी स्पष्ट नहीं है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं, खुदा हाफिज।
Thank you.